फिर उम्मत मुस्लिमा को जो बुनियादी चीज जिससे अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है उसका हुक्म है, और वो क्या है, रिस्क हलाल। क्योंकि पेट में जब तक हलाल नहीं जाएगा, ना अल्लाह से मोहब्बत होगी ना उसके कामों से मोहब्बत होगी। इसीलिए फरमाया यूहन्ना सुकुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, ए लोगो, और आप देखिए ये सबको कहा जा रहा है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का फर्क नहीं है इसमें, ए लोगो जमीन में जो हलाल और पाकीजा चीजें हैं इनको खाओ, और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फुहश का हुक्म देता है, और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं कि वो अल्लाह ने फरमाई है। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए इनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी के तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से काम कुछ भी ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी किए जाएंगे? अंधी तकलीद की बात है, इंसेस्ट्रल वर्शिप। आज लोग आबाप परस्ती के नाम पे, खानदानों की बातें, बुजुर्गों की बातों के नाम पर अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ते हैं। तो इसी की बात जहां की जा रही है कि ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हांक पुकार की सदा के सिवा कुछ भी नहीं सुनते। ऐसे लोग जब भी कोई काम करते हैं और उनसे कोई पूछे कि ये किसने कहा आपको करने को, कहते हैं हमारे बड़े ऐसे ही करते थे। आज आप देखिए हमारी शादियों की रसूमात कुछ ऐसी हैं कि जिनके अंदर कोई लॉजिक ही समझ नहीं आती। पूछे क्यों करते हैं, कहते हैं नानी दादी के वक्त से चल रहा है। दीन के नाम पे बास काम लोग करते हैं किसी खास मौके पे, किसी खास दिन पे, वो क्यों कर रहे हैं, कहते हैं दादी अम्मा ये करती थी, वो नानी करती थी, मेरी सास शुरू से करती थी, भाई साहबा ने किया, अल्लाह के नबी ने किया, कहते ये तो हमें नहीं पता। तो अल्लाह ताला मिसाल देते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कुछ नहीं सुनते, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो, तो जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं इनको बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या पता चला, खाना इबादत है, पर कितना, पेट में थोड़ी सी जगह रख के हलाल खाओ। कोई माँ अपने बच्चे को इस बात पर डांटती है कि खाना क्यों खाया, खाना पका के रखा है, खबरदार अगर हाथ लगाया। आज इस्लाम के नाम पर यह भी एक इल्जाम लोगों ने डाल दिया कि इस्लाम जो है वो भूखा रखना सिखाता है और मुर्दा दिल और रोते धोते देखो, और लोग इसीलिए दीन पे नहीं आना चाहते, कहते फिर सब खत्म होगा। हालांकि अल्लाह करे कुलू खाओ, क्या करो, खूब अच्छा खाओ और खूब अच्छे काम करो, खूब अच्छा पहनो और खूब अच्छे काम करो। बिगड़ता कब है मामला, जब वो खूब अच्छा खाते हैं और काम उतने खराब करते हैं। आज देखिए आम दिन का रोज सब्जी दाल खाते हैं तो 5 वक्त की नमाज भी वक्त पे, इबादत भी है, कोई गीबत और चुगली भी नहीं, कोई एक्सपोजर भी नहीं, और जिस दिन शादियों और पार्टियों और दावतों के नाम पे खूब अच्छे खाने खा के आते हैं, उस दिन क्या करके आते हैं। ये है असल नजरिया। आप सोचिए कि मैंने जो खाना खाया है उसके बाद किया क्या है, अच्छे काम किए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे उसका हिसाब भी नहीं लेगा। फरमाया अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है इस्लाम की चार वो चीजें जो हराम है। यहां समझ लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का बस एक फल हराम था ना, शैतान ने उसको इतना खूबसूरत करके दिखाया कि बातों में आ गए और उसको चख लिया। इस तरह आज इस्लामी शरीयत में सिर्फ चार चीजें हराम है, ओनली 4 थिंग्स, बाकी सब चीजें वो उसी के बाई प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी है वो चीजें, अल-मैतत वद्दम वलहम अल-खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। यहां सिर्फ नाम याद करें, आगे ये आएंगी बहुत जगह, सूरह मायदा में तो बहुत डिटेल्स है, वहां हम इनकी मजीद डिटेल्स करेंगे। पहली चीज, मुर्दार ना खाओ, यानी वो जानवर जो खुद मर जाए, जिबा ना किया गया हो। फिर खून ना पियो और सूअर के गोश्त से परहेज करो, और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के नाम के सिवा किसी और चीज का नाम लिया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो वो इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या जरूरत की हद से तजावुज कर दे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाला है। अब आप देखिए हराम हलाल के मसाइल आए तो साथ ही अगली आयत जो है वो क्या थी, हक ये है कि जो लोग इन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनिया के फायदों पर इनको भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भरते हैं। होगा क्या, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज अल्लाह ताला इनसे हरगिज़ बात न करेगा ना इनको पाकीज़ा ठहराएगा, और इनके लिए दर्दनाक सजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी और मग़फ़रत के बदले अजाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ کیا پتہ چلا اس روپ میں؟ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک خاص منہج دیا، ان کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ آنے کے بعد کسی ایسی چیز سے ہمیں نہیں روکا جو ہمارے فائدے کی تھی۔ صرف چار چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیے ان چار چیزوں کے ذکر کے بعد ایسے علماء کی بات آ گئی جو دین کے مسائل چھپاتے ہیں، جو لوگوں کے پریشر میں آ کر مسائل کو بدل دیتے ہیں، اس کی سزا بتا دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اگلی آیت پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی بات ہے، آیت 177، اس کا نام آیت بر ہے۔ بیسیکلی اس میں اسلام کی ترتیب بتائی گئی۔ اگر آج ہم دیکھیں تو نیکی کے نام پر انسان دو قسم کے کام کرتے ہوئے دکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہیومینیٹیرین کازز کے نام پہ سوشل ورک کرتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دین کی کیا ضرورت ہے، نماز روزہ تو بس ایک ایسی ریچول کی بات ہے، اصل کام تو ہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک دوسرا گروہ ہمیں دکھتا ہے جو صرف ریچولز پہ زیادہ بات کرتا ہے، لیکن انسانی مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں نہیں دیکھتا۔ اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے مختلف اور دلوں میں کچھ رنجش رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان سب کو جمع کر دیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ایک ترتیب رکھی ہے۔ آئیے آیت شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں آپ کی مدد کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، یعنی نیکی صرف یہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، بلکہ نیکی یہ ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ ایک ایرو ڈال دیجئے، جو چیزیں آپ پڑھیں گے کہ پہلے سب سے نیکی کی کیا چیز ہے، من آمن باللہ، سب سے پہلے نیکی کا آغاز کسی کے ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اور تنگی اور مصیبت میں وہ صبر کریں، اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہی ہیں وہ سچے لوگ اور یہی ہیں متقی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ پوری ترتیب ہے دین کی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ درخت کو پتوں سے شروع نہیں کر سکتے، جڑوں سے ہی درخت شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کی فکر کریں۔ جب ہم عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہیں تو پھر اس کے بعد دوسری چیز عبادات کے رنگ میں اس کا رنگ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں اللہ سے محبت اور پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ مشکل لگے، پھر جب عبادات پختہ ہوتی ہیں تو پھر حقوق العباد اچھے لگتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، پھر اخلاقیات ہیں۔ آج نیکی کے نام پہ آپ دیکھیے تو ہر انسان کے دل میں ایک حب ضرور ہے۔ کسی سوسائٹی کا سب سے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا، اس کو لوگ کرمنلز کہتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ، شرابی، جواری، زنا کرنے والے اور کرنے والیاں۔ آپ کبھی قریب سے ان کو بھی دیکھیں گے نا تو اس کے بھی دل میں نیکی کی خواہش ہے۔ اور یہ جو لفظ بر رہا ہے نا، سکون کو کہتے ہیں، اطمینان۔ تو بر کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ جو اطمینان بخشے۔ دریا میں سے، سمندر میں سے نکل کر جب آپ خشکی پہ پاؤں رکھتے ہیں نا، تو وہ کیفیت نیکی کرنے پہ آتی ہے۔ انسان گناہوں سے کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس کے اوپر آپ کو ایک لیکچر ریکمینڈ کروں گی جس کا نام شاید نیکی کی حقیقت، دو سیریز میں آپ اس کو اگر اس کی ڈیٹیل سے سنیں گے، انشاءاللہ یہ آیت تدبر میں بھی آئے گا، تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ آج امت مسلمہ کو جس چیز پہ کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بیسک سے شروع کروا کر آگے سے آگے دوسری چیزوں پر لے کر چلے۔ بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو ٹوکتے ہیں، نیل پالش کیوں لگائی، یہ کیوں کیا، اسی طرح سے کچھ اور چیزیں، لیکن بعض دفعہ ان کے عقائد میں خرابی ہے۔ لوگوں کو اسموکنگ کرنے پہ ناراض کر دیتے ہیں یا ان سے کچھ بات کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو دعویٰ دینے والے کو، دین کی بات دوسرے کو بتانے والے کو، دین کی ترتیب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کا حسن ہے۔ اب اس سے اگلے حصے میں سورت بقرہ کے ہمیں اقسام بر دکھیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ پورے انسانی معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حصے میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ دین المعاملہ، आज जो लोग कहते हैं कि बस नमाज रोज़ा करो अल्लाह के लिए, बाकी काम अपनी मर्ज़ी के करो, तो आप देखिए कि यहाँ से अब जो आयतें शुरू होंगी आगे, आप देखेंगे कहीं कसास की बात है, कहीं वसीयत की बात है, कहीं हज की बातें हैं, कहीं इसी तरह से तलाक की और इद्दत की और इसी तरह से औरतों के खुफिया मामलात की बातें आ रही हैं। इससे पता चलता है कि दीन जो है एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। हम जिंदगी के किसी गोशे को दीन से दूर नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया। कैसे? अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो इस आजादी से बदला लिया जाए, गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मर्तकिब हो तो इस औरत से कसास लिया जाए। दार जाहिलियत में क्या होता था, एक किसी का कत्ल होता था तो उसके बदले में कबीलों के कबीले कत्ल कर देते थे, खुद कत्ल करते जवाब में गुलामों को कत्ल करा देते। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जो मारेगा वही मरेगा, दूसरा इसके ऊपर उसके जुर्म में नहीं मरेगा। अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए, और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा दे दे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे इसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्लो खिर्द रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। इस जुमले को हाईलाइट करें। आज वेस्ट में बस लोग इस्लामी सजाओं को वहशतनाक करार देते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि इस्लाम बहुत सख्त रिलीजन है। हालांकि आप देखिए, जहां भी इस्लाम को लागू करेंगे तो वहां से कत्ल और इस तरह के क्राइम सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सजा का डर लोगों को गुनाह से रोक देता है। हमें अगर ये सोच मिल जाए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे हमें पकड़ेगा, तो हम कभी भी दुनिया में इस तरह से नहीं काम कर सकते खुल के गुनाहों के जिस तरह के अमूमन नजर आते हैं। फरमाया कि उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। देखिए, ये है इस्लाम। जीते जी भी हमारे माल में दूसरों का हिस्सा है और मरने के बाद भी हिस्सा है। यहाँ वसीयत की एक इब्तदाई आयत बता दी कि आप किसी को भी कुछ देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में इसको बदल डाला तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको अंदेशा हो कि ये वसीयत करने वाले ने जानते बूझते या अनजाने में कोई हक तलफी की है, यानी एक को ज्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इसलाह करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। बास लोग आप देखिए कि किसी की गलत वसीयत को सुनकर फिर उस पर अमल भी करते हैं। गलत किस्म किस तरह की होती है जिसमें हक तलफी है? मसलन कोई कहता है, अच्छा जी ये सारी जायदाद मेरे एक ही बेटे को दे देना, बाकियों को नहीं देना। तो बस दफा इस तरह की बातें गलत तरीके की होती हैं। कोई जाते जाते बच्चे का रिश्ता ऐसी जगह जोड़ जाता है कि जो लड़का दीन पे नहीं है, तो ऐसी तमाम चीजों को बदल दिया जाएगा। इसके तफसीली अहकाम सूरत निसा में आएंगे। यहाँ सिर्फ एक हल्की सी बात करके बता दिया कि देखो, अल्लाह अल हादी है, दुनिया में तो तुम्हें मदद करता ही था, लेकिन दुनिया से जाते जाते भी अल्लाह सुबहान तआला तुम्हारे लिए कवानीन दे रहा है। तो पता चला कि एक मोमिन की जिंदगी मौत तक अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजरेगी। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में इसको बदल डाला तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिनको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने जानते बूझते या अनजाने में हक तलफी की है और फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इसलाह करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अब आपकी आयत आ गई है। आजकल सब के दिल दिमाग पे रमजान और रोजे, तो ये तीन आयात कुरान पाक का वाहिद मुकाम है जिसमें रोजे से मुतल्लिक बातों को डिस्कस किया गया। आइए इसको सुनते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। ऑप्शन नहीं है, फर्ज है। अरबों ने रोजे खत्म कर दिए हुए थे, अपनी बजाय घोड़ों को रोजे रखते थे। जब लूट मार के लिए निकलना होता तो कई कई दिन तक अपने घोड़े के मुंह पर एक इस तरह से ढांटा सा बांध देते थे और घोड़े को खाने को ना देते ताकि वो उनके काबू में आ जाए। इसी तरह से कुछ और तरीके इख्तियार किए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उम्मत मुस्लिमा बनना है तो रोजे रखने पड़ेंगे। रोजे के और तो बहुत सारे एंगल है, लेकिन आज हमारे इस थीम के साथ जो मिलता है वो क्या है कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा। और हिदायत की तड़प रखने वाले को जिंदगी में बहुत मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अगर नफ्स पे काबू नहीं होगा, अगर रूह के तकाजे पूरे नहीं किए होंगे तो ये काम नहीं होगा। आप सोचिए, हसास लोग, सेंसिटिव लोग, आई एम सो सेंसिटिव, मुझे बड़ी जल्दी कुछ होता है, वो कभी अल्लाह के दीन के काम नहीं करते। ये काम वो लोग करते हैं जिसको आप कहना चाहिए कि सख्त जान होते हैं। उम्मत मुस्लिमा जितना अपने आप को और अपनी नस्लों को ऐश कोश जिंदगी में डालती जाएगी, उतना दुश्मन उसके ऊपर गालिब होते जाएंगे। तो रोजे रखकर हमने अपने नफ्स पर काबू पाना है इंशाल्लाह। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। तकवा क्या होता है? जो इंसान को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, सब्र सिखाता है, अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है। और डरते क्यों हो, चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। मेरा ख्याल किसी महीने में इतना कैलेंडर गिना नहीं जाता जितना रमजान में गिनते हैं। एक हो गया, दो हो गया, हाँ, कोई कहता है एक हो गया, कोई कहता है 29 रह गए, बल्कि वो कहते हैं 28 रह गए। दिल से ख्वाहिश होती है कि 29 हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या हुआ। देखिए, इसमें खबर भी है और हुक्म भी है। खबर क्या है कि कोई बात नहीं, चंद दिन की बात है। हुक्म यह है कि अगर कोई रोजा छूटा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर भी ना रखें तो वो फिदिया दे दें। ये क्या बात हुई? तो लिख लीजिए, ये इब्तदाई हुक्म था। अल्लाह ताला का दीन लोगों को रियायत देता है। शुरू में रोजे कैसे फर्ज हुए थे? कि रोजा रख लो या उसका फिदिया दे दो। अब कुछ लोग थे जो रोजा रखना चाहते थे वो रोजा रख लेते थे, जो नहीं रखते फिर वो दूसरे को फिदिया दे देते। फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई तो वो फिदिये वाला मामला सिर्फ मजबूरियों में रख दिया गया, आम हालात में सबको रोजा रखना पड़ा। आज आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से आदत डाल सकते हैं, बेटा रख लो, जहां तक रख सके रखना, फिर खोल देना। बीमारों को भी ऐसे ही कहा करें, अच्छा आप हार्ट पेशेंट है, आप उठिए सहरी खाइए, नियत कर ले तो आप बस कह दें अल्लाह जहां मेरी दवाई का वक्त आएगा मैं तोड़ लूंगी, जहां मेरा दिल घटने लगेगा मैं तोड़ लूंगी। शुगर पेशेंट्स हैं उनको भी ऐसे करें, आप अनयूजुअल किस्म की चेंजेस उनकी तबीयत में देखेंगी कि एक रोजा नहीं उनको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, कोई अगर ऐसी बीमारी है जिसके बगैर नहीं जी सकते तो वो तोड़ सकते हैं, अल्लाह ने रुख्सत भी दी है, लेकिन डोंट गिव अप। आज हम बहुत जल्दी गिव अप जब कर जाते हैं ना तो फिर कुदरत खत्म हो जाती है। कफारा कितना है? एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। जब अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। यानी नाप तोल के नेकियां ना करो, गिन गिन के अल्लाह को पैसे ना दिया करो कि अच्छा कितना दूं, एक वक्त का खाना, दो का, क्या जितना मर्जी दे दो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि रोजा रखो। इशारा है कि बात पे बात ना छोड़ो। देखिए, आज छोड़ देंगे कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाद में रखना बहुत मुश्किल होगा। जब रमजान होते हैं 30 रोजे हम रख लेते हैं क्योंकि सब रख रहे हैं, और ईद के बाद 6 रोजे शवाल के मुश्किल हो जाते हैं। शाबान में शायद ही कोई रोजा रखा हो क्योंकि दूसरे नहीं रखते, तो वही छोड़े जिसको यकीन है कि वो बाद में रख लेगा। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक को बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। बस अब से जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। रमजान का असल हुसन कुरान है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया, इस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार और एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। यानी रोजे रखने के बाद ईद की तकबीरात भी पढ़ो। हम में से कितने लोग हैं जो दिल से शुक्र करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया और उसके बाद तूने फिर मुझे रोजे रखने वाला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत दीन है। मैं सोचती हूँ अगर दूसरे लोगों को सिर्फ इस दीन के बाद जो इंसान की तबीयत में सुकून और खुशी आती है वो पता लग जाए, तो आज वो सारे जो डिप्रेशन के मरीज और ड्रग्स लेने वाले हैं वो इस सोच के साथ इस्लाम में आ जाए कि ये दीन है, सुकून है, फितरत का दीन है। फिर उसके बाद देखिए कि रोजे की हालत में एक और चीज, वो है दुआ। लोगों ने अपने माबूद बनाए और उनके पास पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, उनसे पहले इजाजतें लेनी पड़ती हैं, उनसे टाइम लेने पड़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, मैं हूं तो बादशाह, मालिक अल मुल्क हूं, लेकिन मेरे पास आने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, कोई वक्त का इंतखाब नहीं, बल्कि वह इजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दान, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ارے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. اللہ کا نام ہے القریب. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو قریب سمجھتے ہیں؟ سورہ قاف میں بھی ہم پڑھیں گے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شہرک سے بھی اللہ قریب ہے. اللہ کو دور نہ سمجھیں. جب انسان اللہ کو دور سمجھتا ہے نا، ایک تو مایوس ہو جاتا ہے اور ایک گناہ گار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کو تو میرے اس گناہ کی خبر ہی نہیں ہونی. پکارنے والا جب مجھے پکارتا میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے. انسانوں میں کیا کوئی ہر وقت اویلیبل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، امپاسیبل ہے. انسان کی اپنی ضرورتیں ہیں. انسان سو سکتا ہے، انسان تھکا ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچے کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات ان تمام ضروریات سے خالی ہے. لہٰذا وہ رات کو، دن کو، جب کوئی پکارے. اس میں اتنا خوبصورت گرامر کا حسن ہے کہ جب کبھی آپ تفصیل سے ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان آیتوں میں سے اتنا کچھ مل جائے گا کہ اللہ کس طرح سے قریب ہے. کرو کیا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ میری دعائیں قبول ہوں. تو کہا بس ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ وہی جو ابراہیم کو دی تھی، اس قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہم رب کی مانیں، رب ہماری مانے گا. اور مجھ پر ایمان لائیں. کس بات کا؟ کہ میرے سوا دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں. یہ بات تم ان کو بتا دو، شاید کہ وہ راہ راست والے. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا. ابتدائی دور میں روزے میں کیا کیفیت تھی؟ صرف مغرب سے عشاء کے بیچ میں کھا پی بھی سکتے تھے اور کوئی بھی خواہش تھی وہ پوری کر سکتے تھے. جو ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوا سب پابندیاں لگ گئیں، یعنی رات بھی روزے سے ہی ہوتے تھے آپ یہ کہہ لیں. یا پھر اگر عشاء سے پہلے بھی سو گئے تو بھی یہی پابندی تھی. لیکن ایک صحابی تھے، قیس بن سرمہ، ان کی وجہ سے اللہ نے یہ کمی کر دی. جو روزے سے آئے گھر میں تھے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگی ہے تو نہیں، میں ہمسائے سے پوچھتی ہوں. اتنے میں وہ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنے کا مطلب یہ تھا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. اگلے دن کھیتوں میں کام کرتے ہوئے تھکن اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہوئے بے ہوش ہو گئے. جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی. ایک صحابی کے لیے اللہ نے قرآن کی آیتیں بدل دی اور کہا اب تم راتوں کو کھا پی سکتے ہو. اور جس کو بھی روزہ مشکل لگے اس کو یہ آیت بتائیں کہ سوچو اگر رات کا بھی روزہ ہوتا. کچھ لوگ تو جو دن میں روزہ رکھنا ہوتا ہے ساری رات کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں تاکہ سٹوریج تو ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا رحم کیا. دین اسلام یا دین محمدی، اس میں بہت سہولتیں ہیں. پہلے ادیان مشکل تھے.